ओम शांति। आज की मुरली बहुत पावरफुल था। आज की मुरली के पॉइंट्स क्या थे, याद है? क्या था आज के पॉइंट्स? स्नेह के तीन प्रकार के, तीन विशेषताएं हैं बाबा ने बताई। स्नेह के बारे में बाबा ने बताई, एक है स्नेही, एक है सहयोगी और तीसरे शक्तिशाली, है ना? और स्नेह भी कैसे, तीन प्रकार के स्नेही बाबा ने बताई। एक है हमेशा जो स्वतः निरंतर जो रहते हैं, और दूसरे हैं समय प्रमाण, मतलब से। हम भी मतलबी हैं या निरंतर याद करने वाले, निरंतर प्यार करने वाले हैं या मतलबी हैं? अपने आप को देखें। जब मुश्किलें आती है ना, जब समस्याएं आती हैं, तब बाबा की याद बहुत आता है। जब बैठ करके बाबा बार बार हर रोज बाबा के सेंटर पे जाते हैं, बाबा को याद करते हैं। जब थोड़ा सा समस्याएं कम हो गई, हाँ समय ही नहीं है सेंटर पे आने के लिए, समय ही नहीं है बाबा को याद करने का, समय ही नहीं है, फिर से जो कोई समस्याएं भाग भाग के फिर आएंगे। वो कौन किस कैटेगरी में आएंगे ऐसे लोग? सेकेंड कैटेगरी में, है ना? तो मतलब से याद करने वाले आत्माएं। और तीसरे हैं मजबूरी से, किसी के दबाव में आकर के बाबा को याद करने वाले। वो दबाव वाले कैसे होते हैं? हाँ, किसी को संतुष्ट करना है या समस्याएं भी आई तभी भी करते, तो किसी ना किसी इंसान के या परिस्थितियों के दबाव में आकर के जो बाबा को याद करते हैं, वो तीसरे कैटेगरी के हैं। तो इसीलिए हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, हम किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। निरंतर बाबा को बिना मतलब के निरंतर अलग अलग संबंधों से याद करने वाले, बाबा ने ये मिसाल भी दिया ना, जब मुरली सुनते हैं तो किस रूप से बाबा को याद करना है? शिक्षक के रूप में, शिक्षक के संबंध से बाबा को याद करना है। मुरली सुनते समय अगर सखा के रूप में याद करें तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा, है ना? सखा के साथ तो चिटचैट करते हैं, थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, लेन देन करते हैं, तो वो अलग संबंध हो जाता है। तो हर समय के लिए अलग अलग संबंध है और हर संबंध की गहराई अलग है, हर संबंध का फ्लेवर भी अलग है। प्यार का जो फ्लेवर है हर संबंध का, वो अलग अलग है, है ना? तो इसीलिए बहुत मुरलियों में बाबा कहते हैं हर संबंध को अनुभव करो बाबा के साथ, सर्व संबंधों से याद करो, बाबा कहते हैं। एक दो संबंध नहीं, किसी को बाप का संबंध बहुत अच्छा लगता है, बाप के संबंध से बाबा को याद करते हैं, कोई टीचर के संबंध से, कोई फ्रेंड के, सखा के संबंध से याद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संबंध है तो हम भूल ही जाते हैं। कौन से संबंध है कि अक्सर करके हम भूल जाते हैं बाबा के साथ? एक है माँ के साथ का संबंध। बाबा के साथ माँ का संबंध बहुत कम लोग मैंने देखी है, तो माँ के संबंध के साथ याद करते हैं जो बाबा को। और दूसरा है सद्गुरु, सद्गुरु के संबंध से बाबा को याद करना, वो भी बहुत जरूरी है। और तीसरा जो बहुत कम लोग अनुभव करते हैं वो है बाबा को बच्चा बनाना, है ना? वो भी संबंध बहुत जरूरी है। माना मुख्यतः हमारा बाबा के साथ कितने संबंध है? पांच है, सब संबंध है, लेकिन सब संबंधों में कौन से संबंध है? तीन है। फेल हो गए आप। पांच है, सिक्स है, सेवन है, एट है। बाप रे, आपको एट कौन कौन सा है बताओ, उठो उठिए। पिता है, टीचर है, सदगुरु है, माँ है, साजन है, बच्चा है, हा? भाई। सखा कहाँ चला गया? सखा फ्रेंड है ना। हाँ, सात संबंध जो है ना, भाई वो सब वो दूसरों, ये मतलब सात संबंध हमारा मुख्य है। मात पिता, टीचर, सदगुरु, सखा, स्वामी और बच्चा। साजन भी छोड़ दिया आपने, है? बोला ना आपने। हाँ, ये सात संबंध बाबा के साथ मुख्य है। तो सर्व संबंध, इन सातों ही संबंधों से बाबा को याद करना बहुत जरूरी है, है ना? तो अभी याद करने के लिए संबंध की जरूरत है, और संबंध को गहरा करने के लिए फिर स्नेह की जरूरत है ना? तो ये सारा इंटरकनेक्टेड है। अगर ज्यादा बाबा को याद करना है, केवल शक्ति, बाबा सर्वशक्तिमान है या गुणों के आधार से बाबा को याद करते हैं, शक्तियों के आधार से बाबा को याद करते हैं और संबंधों के आधार से याद करते हैं, उसके बीच में क्या अंतर है आपको पता है? एक है गुणों के आधार से याद करना, माना बाबा शांति का सागर है, सर्वशक्तिमान है, प्रेम का सागर है, पतित पावन है, तो इन गुणों के आधार से बाबा को याद करना एक है। केवल बाबा को, शिव बाबा को ऐसे ही याद नहीं करते ना, इधर गुणों के आधार से, कर्तव्यों के आधार से या फिर संबंधों के आधार से हम याद करते हैं। केवल शिव बाबा करते हैं, वो फीलिंग नहीं आती है ना। तो ये तीन आधार होता है हमारा, गुणों के आधार से, कर्तव्य के आधार से, बाबा आकर के करते क्या है उसके आधार से जब आप याद करते हैं ना, तो प्यार बढ़ता है ना। और तीसरा है संबंधों के आधार से हम याद करते हैं, है ना। गुणों के आधार से याद करने में और संबंधों के आधार से याद करने में क्या अंतर है? क्या अंतर है? गुणों के आधार से याद करने में कोई भावनाएं जुड़ी नहीं है, उसमें भावनाएं नहीं है। हाँ, पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है, वो उसके गहराई में जाना, उसके अनुभूति में जाना, ठीक है। लेकिन जब संबंधों के आधार से याद करते हैं ना, तो उसमें भावनाएं जुड़ी, इमोशंस हमारे, फीलिंग्स जुड़ी हुई है, क्योंकि संबंधों में फीलिंग्स है। पिता है, पिता है तो मैं बाबा का बच्चा हूं, उसमें संबंध में फीलिंग है कि हाँ, भावनाएं हैं, बाबा मेरा माँ है, मैं उसकी बच्ची हूं, वो टीचर है, स्वामी है, सखा है, तो वो जो भी संबंध जोड़ते हैं उसने भावनाएं, जहां भावनाएं हैं वहां गहराई है, वहां परिवर्तन सहज है। मोहब्बत में परिवर्तन सहज हो जाता है, मेहनत में परिवर्तन बहुत मुश्किल लगता है। तो संबंधों के आधार से मोहब्बत की अनुभूति करते हैं, मोहब्बत में परिवर्तन सहज हो जाएगा, है ना? तो उस मोहब्बत को गहरा करने के लिए फिर हमें सर्व संबंधों की अनुभूति, एक एक संबंध की गहराई लंबे काल तक, है ना? तो एग्जाम्पल, अगर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो सात हफ्ते के सात दिन है, सात दिन के सात संबंध, एक एक दिन एक एक संबंध की अनुभूति अगर करते हैं, वो एक दिन पूरा, अगर आप आज क्या संडे है ना, तो कल सोमवार है, तो कोई ना एक संबंध अगर लेकर के बाबा के साथ वो वही संबंध पूरा दिन अनुभव करते, वो भी उसी संबंध के साथ आप बाबा के साथ चिटचाट करते हैं, तो वो संबंध और गहरा होना शुरू हो जाता है। तो हमारे लिए भी एक अलग अलग फ्लेवर मिल जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग अलग, तो एक मोनोटोनस नहीं रहता है पुरुषार्थ में, तो अलग अलग हम अनुभव कर सकते हैं। तो आज जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास नोटबुक और पेन होना बहुत जरूरी है। सभी के पास है नोटबुक और पेन? किसके पास नहीं है वो हाथ खड़ा करेंगे। किसके पास नहीं है तो आसपास के लोगों से आप उधार ले लीजिए पेपर और पेन। तो अभी इस संबंध को हम गहरा कैसे करें? गहरा कैसे करेंगे कि हम बाबा के साथ शेयर करना शुरू करें, जो भी बात है बाबा को बताना सीखे हम। भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में अंतर क्या है? भक्ति मार्ग में केवल हम गाते थे, तो मात पिता बंधु सखा सब आप हो, लेकिन ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकली वो संबंध हम अनुभव करते हैं। वो अनुभव हम कैसे करें? केवल सुबह के टाइम पे। भक्ति मार्ग में क्या करते थे? सुबह स्नान किया, फिर पूजा पाठ की, पूजा करते समय भगवान को याद किया, भगवान को माता पिता के रूप में याद किया, कीर्तन गाया, फिर बाद में फुल स्टॉप हो गई, वो अलग हो गए, फिर हम अपने कारोबार में लग गए। तो वो जो जीवन, सुबह का जीवन और फिर उसके बाद का जीवन, कोई भी कनेक्शन नहीं है, है ना? सब कुछ गुण गुण गाते हैं, क्या शिक्षाएं हैं वो सब कुछ याद करते हैं, लेकिन शिक्षाओं को हमने धारण नहीं किया वहां। लेकिन यहां दिन भर हमारा संबंध बाबा के साथ है, तो बाबा को याद किया सुबह, लेकिन दिन भर भी याद रहा, शिक्षाएं याद रही, उसको कोशिश की धारण करने की, है ना? तो दिन भर के योगी है हम, 24 घंटे योगी है, सुबह के योगी नहीं है, है ना? आप सभी कौन है? 24 घंटे राजयोगी है या फिर केवल अमृत वेला मुरली क्लास तक राजयोगी रहे, फिर बाद में जब नौकरी करने के लिए चले अपना कपड़ा भी बदलते हैं ना, ठीक है, सेंटर पे जाते हैं तो सफेद कपड़ा पहनते हैं, फिर नौकरी पर जाते हैं तो कपड़ा बदल के जाते हैं, तो कपड़ा बदले फिर आप व्यक्तित्व भी बदलेंगे क्या? नहीं, केवल कपड़ा बदला हमारा, लेकिन हम रहे अंदर से कौन? राजयोगी। आप सभी राजयोगी है ना, केवल योगी नहीं है, राजयोगी है ना? तो वो जो योग है निरंतर बनाने के रखने के लिए हमें क्या करना होगा? जो भी छोटी छोटी बातें हैं जिंदगी की, बाबा को बताना है। केवल बड़ी बात उनको नहीं, बड़ा मुश्किल आया, बड़ी बात परिस्थिति आई तब जाकर के बाबा को याद किया, नहीं, बाबा ने आज क्या बोला, हर समय बाबा को याद करना, मतलब से नहीं प्यार से। प्यार से अगर याद करते हैं तो हर छोटी छोटी चीज बाबा को बताते हैं, है ना? जिनको आप याद, जब छोटे बच्चे होते हैं मम्मी पापा को आकर के सब बताते हैं ना, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ, चाहे वो उसके बाद उसकी जरूरत है या नहीं है, काम की है या नहीं है, हर बात बताते हैं। ऐसे ही हमारा संबंध बाबा के साथ होना चाहिए, सुबह से जो भी हुआ हर चीज बाबा को बताएं। बाबा हाँ इतना बड़ा बाबा भगवान है तो ऑफिशियल नहीं है हमारा संबंध, हमारा बाबा के साथ भगवान के साथ संबंध हमारा ऑफिशियल नहीं है, हमारा पिता है वो, पूरे संसार के लिए वो भगवान है लेकिन हमारे लिए वो पिता है, सखा है, स्वामी है ना। तो वो संबंध अगर बना के रखना है या उस संबंध को गहरा करना है, डीप करना है, तो हमें बताने की जरूरत है। और ये टू वे कम्युनिकेशन है ना, प्रेयर्स में, भक्ति में जब पूछते हैं वो वन वे कम्युनिकेशन है, केवल बता रहे हैं भगवान को ये है, ये प्रॉब्लम्स, ये समस्याएं हैं। लेकिन अभी योग में हम क्या करते हैं, बाबा को भी हम सुनते हैं, है ना, हम बताते भी हैं और बाबा क्या बोल रहे हैं वो भी हम सुनते हैं, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये करते हैं, हम बताते हैं बाबा को जो भी बात है। अभी लेटर लिखेंगे बाबा के नाम पे, है ना। बाबा कहते हैं ना हर रोज रात को आप बाबा को चार्ट लिखो, चार्ट अलग अलग रीति से लिखना होता है, जो पॉइंट्स लिखते हैं चेक करते हैं अमृत वेला पावरफुल रहा, क्रोध कम हुआ, ये हुआ, जो भी पॉइंट्स होते हैं। दूसरा है लेटर, सारे दिन में जो भी हुआ बाबा को अर्पण करना। अभी लेटर लिखना शुरू करेंगे बाबा के नाम पे। उस लेटर में क्या लिखेंगे, जो भी बाबा को आपको बताना है ना। हमारा संबंध बाबा के साथ ऑफिशियल नहीं है, कोई भी पिता के रूप में, सखा के रूप में, जो भी बात आपको करना है बाबा को के साथ, प्यार की बातें, उलना हो तो भी ठीक है, कोई कंप्लेन्स हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्याएं हो, जो भी बाबा को बताना है, दिल खाली करना है। अभी जब दिल खाली करेंगे तभी बाबा उसमें भरेंगे, है ना। खाली नहीं करें तो बाबा क्या भरेंगे, है ना। जो भी बात है, अगर कुछ कोई प्रकार के भारीपन है, चिंता है, समस्या है, उलना है, अगर कुछ नहीं है तो बाबा को धन्यवाद करना, थैंक्स देना, जो भी उन्होंने दिया है अपने जिंदगी में, प्यार देना, एक्सप्रेस करना, अपने प्यार एक्सप्रेस करना बाबा के प्रति।
दिल की दवा तुम कलम डुबो कर, बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर, हाले दिल सब सच लिखता हूँ। खत लिखता हूँ शाम सवेरे, याद में तेरे बीते दिन और बीते रहना, तेरे खयाल को ही देखे ये मेरे नैना, लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ।
दिल की दवात में कलम डुबो कर,
बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। बसी है मूरत तेरी, दिल में है तेरी तस्वीर, परम धाम से आकर बाबा बना रहे सब की तकदीर, खट का सार यही है बाबा, सम्मुख मिलने को लिखता हूँ।
जब साल में एक बार या दो बार लिखते हैं ना तो लंबा होता है, हर रोज लिखते हैं शॉर्ट शॉर्ट हो जाता है ना। तो ये रोज आदत डालनी है, या फिर रोज अगर नहीं लिखते लिख सकते दो तीन दिन में एक बार, तो वहां के वहां फिर पूरा हो जाता है ना। तो ये आदत डाली, तो क्योंकि आप पहली बार लिख रहे हैं ना पूरे कल्प में, तो इसीलिए बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा कल के लिए भी बचा के रखना। हा? अभी आपने पूरा फाड़ के ये भी कर दिया। ठीक है, आप तो बहुत क्विक है, बहुत जल्दी है आपका। ठीक है, आप रखिए अपने पास। जिनका नहीं हुआ है वो क्लोज कर दीजिए लेटर। क्लोज माने जो लास्ट लिख देते हैं ना लेटर में, क्या लास्ट लिखते हैं, जो भी लिखना है लास्ट में क्लोज कर दीजिए। प्रॉपर लेटर लिखना है ना, ऐसा नहीं कि हाँ चार सेंटेंस लिख करके पूरा कर दिया, नहीं, प्रॉपर ठीक तरह से। अभी फ्रेश पेज लेंगे, नया पेज, नया पन्ना लेंगे। उस पन्ने पर क्या लिखना है, बहुत इंटरेस्टिंग बात। इस नए पेज पर आपको वो लिखना है जो आप पहले जो लेटर लिखा है उसके जवाब में बाबा क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं। ये खुद कैसे करेंगे, बाबा कुछ और सोचते होंगे, मेरे विचार कुछ और होगा, बाबा क्या जवाब देंगे उसका, बाबा जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। आप जो भी पूछते हैं, जो भी संकल्प है, बाबा जवाब देते कि नहीं देते, देते हैं। ठीक है, किसको अनुभव है बाबा जवाब देते हैं, बाबा ने दिया होगा आपको, आपके पर्सनल प्रॉब्लम अगर बाबा के साथ शेयर किया होगा तो बाबा ने उसके जवाब में कुछ दिया हो, मतलब कुछ बोला होगा, है ना। बहुत सारे लोगों को अनुभव है, किस रूप से जवाब देते हैं बाबा, मुरली से, मुरली में कुछ ना, उस दिन की मुरली में कुछ ना कुछ ऐसे बात होती है जो हमें जवाब मिल जाता है अपने प्रॉब्लम का। और दूसरा टचिंग, बाबा से डायरेक्ट, जिसकी बुद्धि बहुत क्लियर होता है तो बाबा के जो टचिंग, बाबा के साथ कनेक्शन बहुत जब क्लियर होता है तो टचिंग से भी पता चल जाता है बाबा ये चाहते हैं, बाबा का जवाब ये है। और तीसरे प्रकार ये है कि कोई ना कोई निमित्त बन जाता है, तो कोई ना कोई आकर के कुछ ऐसा बोल देता है और कुछ ऐसा कर देता है, जैसे सिग्नल हमें मिल जाता है कि बाबा शायद इस ये चाहते होंगे तो इसीलिए ये सिग्नल मुझे मिला है। तो इन तीन प्रकार से हमें पता चल जाता है कि बाबा क्या चाहता है या संसार क्या चाहती है, जो भी है ना। तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो कौन सी विधि है? टचिंग पावर। हाँ, मुरली से भी वो मिलता है, ठीक है। अगर मुरली कभी कई बार कुछ अलग होता है, ये होता है, तुरंत नहीं मिलता है जवाब, तो सबसे श्रेष्ठ विधि है टचिंग पावर। बाबा अव्यक्त मुरलियों में कहते हैं टचिंग पावर और कैचिंग पावर को पावरफुल बनाओ। ये टचिंग पावर और कैचिंग पावर है क्या? कैचिंग पावर माना बाबा सिग्नल्स भेजते हैं, बाबा कुछ कह रहे हैं, मैं उसको ग्रहण करूं। अगर मेरे बुद्धि में किचड़ा है, व्यर्थ है, नेगेटिव है, ब्लॉकेजेस है, बाबा जो कह रहे हैं तो उसको मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि में ब्लॉकेज है ना, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आता। तो इसलिए वो टचिंग पावर को, मैं कैचिंग पावर को मैं समझ नहीं पाती, कैचिंग पावर मेरे पास नहीं है, तो इसलिए बाबा जो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, ये है कैचिंग पावर। टचिंग पावर माना मैं जो वाइब्रेशंस भेज रही हूं लोगों को, वो कैच करे, मेरा भी सिग्नल इतना पावरफुल हो, मेरे भी मन इतना शक्तिशाली हो, क्योंकि बाबा हमें क्या बना रहे हैं? बाबा हमें आप समान बना रहे हैं, बाबा जैसे बना रहे हैं। बाबा अगर शक्तिशाली है, बाबा हमें भी शक्तिशाली बना रहे हैं, है ना। जो हम अगर शक्तिशाली है तो हमारे मन भी शक्तिशाली होगा। जो भी हम बात वाइब्रेशन, जो भी हम सोचते हैं दूसरों तक पहुंच जाए वो है टचिंग पावर। कई बार, बहुत बार हमें वो पता चलता है कि किसी को याद किया वो व्यक्ति आ गया सामने, किसी को याद किया उसका फोन आ गया, हम ना वो है टेलीपैथी, हमारे पास है वो शक्ति, लेकिन उसको और पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। अभी वो महसूस करेंगे, अभी उस टचिंग पावर को हम महसूस करें कि वो, फिर पता चलता है कि हमारे अंदर वो टचिंग पावर कितना है। जो भी आपने लेटर लिखा बाबा को, जब आप लिख रहे थे बाबा को पहुंच गया, है ना, जब लिख रहे थे संकल्प जब आया क्या बातें, तो तभी बाबा को वो लेटर पहुंच गया। बाबा को पता है आपने क्या लिखा है ना। तो अभी जवाब में बाबा क्या कहते हैं उसको महसूस करें। उसको महसूस करने के लिए मन एकदम शांत, एकदम शांत, है ना, और फिर अपने मन और बुद्धि को सूक्ष्म वतन में ले चले आपके सामने बाप दादा है, बाबा को देखें, आप तीसरे आंख से बाबा को देखें, ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर और ब्रह्मा के तन में शिव बाबा, बाप दादा दोनों ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आपके सामने हैं, बहुत मीठे रूप से मुस्कुरा रहे हैं, आपको दृष्टि दे रहे हैं। एकदम बहुत प्यार से बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा कुछ कह रहे हैं आपको, उस पत्र के जवाब में बाबा कुछ कह रहे हैं। उसको कैच करेंगे, उसको महसूस करेंगे और बाबा जो जो बोल रहे हैं वैसे वैसे आप अपने हाथों से लिख रहे हैं। ये भी महसूस करें कि बाबा आपके हाथों को यूज करके आपके लिए बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा लेटर लिख रहे हैं। ये बाबा का लेटर आपके नाम से, अगर टच हो रहा है आप लिखना शुरू कर सकते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, जिनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, बाबा ने अच्छी टचिंग दी है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं वो आप आगे आ सकते हैं। माइक दे दीजिए। पहला लेटर जो आपका पर्सनल है उसके बारे में नहीं बताना है, क्योंकि आपके दिल की बात है, जो आपको शेयर करना है अभी वो है सेकंड लेटर। बाबा ने क्या जवाब दिया है और संक्षिप्त में जो शेयर करना चाहते हैं वो आगे आकर के माइक लेकर के आइए भाई जी, जो सुनाना चाहते हैं आगे सोफे पे आके बैठ जाइए ताकि फिर समय वेस्ट नहीं होगा, या आगे वाले सोफे पे आ जाइए।
ओम शांति।
आपका मुंह उस तरफ।
ओम शांति। बाबा ने बताया अमृत वेला रेगुलर करो, धारणा पक्का करो, आत्मअभिमानी स्थिति में ही रहो, लगातार प्रयास करो, क्रिमिनल आई से सिविलर आई बनाओ। ओम शांति।
आपने अपनी समस्या बताई थी बाबा को पहले लेटर में, उसके जवाब में ये दिया है बाबा ने। आप संतुष्ट है उस जवाब से?
ओम शांति। बाबा ने बोला, मीठे बच्चे तुमने जो आदाकल्प भक्ति की उसका फल देने मैं तुम्हें अपना बच्चा बनाकर तुम्हें रोज ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहा हूं, अब तुम जितना चाहो अपना अपनी ज्ञान रत्नों से झोली भर सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे हाथ में भाग्य लिखने की कलम पकड़ा दी है, अपना जैसा भाग्य लिखना चाहो लिख सकते हो, अब तुम्हें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है, यह शिक्षा सिर्फ संगम युग पर ही मैं तुम्हें देता हूँ, मेरे शिकील दे बच्चे। ओम शांति।
एक भाई और एक बहन, ठीक है, एक मिनट रुकिए भाई जी, रुकिए बहन अभी।
बाबा ने कहा माय डियर से चिल्ड्रेन, बच्चे बाप को शुक्रिया नहीं बोलते, क्योंकि बाप का तो कर्तव्य ही है अपने बच्चों को संभालना। अब चूंकि तुम बहुत मुश्किल से संभली हो तो अपने ऊपर दृढ़ निश्चय रखना, बाबा अपने बच्चों को आप समान बना देकर बहुत खुश होता है। बच्चे कल्याणकारी बाप के बच्चे होते सर्व के कल्याण के प्रति सोचते हैं, बाबा को बेहद खुशी है। बाबा भी पल प्रतिपल तुम्हारी हेल्प देता रहेगा। और सदा याद रखना पहला कदम तुम्हें ही बढ़ाना हो।
बड़ा लंबा चुटचुटी है।
क्योंकि बाबा को कैसे पता इस बाजार में तुम्हें कौन सी चीज पसंद है जो बाबा तुम्हें दिलाए, डिमांड तो तुम्हें ही करनी होगी। अच्छा मेरे मीठे मीठी प्यारी बच्ची को बाप दादा का इसने याद प्यार और दुलार।
बाबा ने कहा बच्चे तुम अच्छे बच्चे हो, रोज मुरली ध्यान से पढ़ो, तुम्हारा पुरुषार्थ कुछ दिनों से कम हो रहा है, एक कदम बढ़ाओगे तो हजारों कदम बढ़े हुए मिलेंगे। कुछ ऐसे बातों में जो तुझे ग्लानी करे, बाबा की मुरली में बार बार कहता है कुन बातों को ख्याल मत करो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, और अपने पाठ को समझते हुए तुम्हारा लक्ष्य है उसके लिए आगे बढ़ो।
ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बोले कि मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, आपको तो मुरली बाबा डेली देते हैं, तो मुरली में आपका सब आ जाता है। अब समस्या सुनाने का टाइम नहीं है, अब उसका समाधान स्वरूप बनो। और बाबा तो प्रतिदिन बच्चे को प्यार कर नहीं, पूरा संगम बाबा आए हैं आपको संभालने के लिए। एक कदम बढ़ाओगे तो बाबा आपको हजार कदम मदद करेंगे। मेरे मीठे बाबा, थैंक यू बाबा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।
मेरा नाम दीपक है। बाबा ने बोला मीठे बच्चे दीपू, मुझे दीपू करके बोला। तुमसे तो मैंने पहले ही कहा है बच्चे, तुम चिंता मत कर, तुम्हारा काम तो तुम्हारे सोचने से पहले कर देता हूँ। तुम इन दिनों आने वाली कठिनाइयों में भी कठिनाई का सामना करना पड़ा क्या, तो फिर चिंता कैसी, हमेशा खुश रहो, तुम्हारा बाबा।
ओम शांति। मुझे ये एहसास हुआ कि बाबा ने कहा मीठे बच्चे, यह सब ड्रामा का पार्ट है, जो हुआ अच्छा था, जो हो रहा अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा है।
ओम शांति। बाबा को पत्र में बहुत सारी समस्याएं लिखी, बाबा ने बहुत प्यार से उत्तर दिया। उत्तर देने के पहले बाबा ने मेरी बहुत बड़ाई की, बोला तुम्हें पता है तुम क्या हो, ये छोटी मोटी समस्याएं कुछ है तुम्हारे सामने, स्वयं भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हें पता है तुम कौन हो। और बाबा ने कहा कि ज्ञान योग का खूब अभ्यास करो, अशरीरी बनने की खूब अभ्यास करो, दिन रात लगे रहो। और बाबा ने अंत में एक बात कहा बहुत प्यार से कि देखो तुम्हारा जन्म जो है वो बहुत साधारण हुआ है, लेकिन तुम्हारी मृत्यु जो है वो साधारण नहीं होगी, तुम विश्व के स्टेज पे आओगे और अनेक आत्माओं की प्यास बुझाओगे, यही बाबा ने कहा।
बहुत अच्छा।
ओम शांति। बाबा ने कहा कि बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, तुम मेरे गोद में हो, जो आप समस्या सुनाती हो मेरे को, मैं सब समझती हूँ, अब तेरा काम हो जाएगा, अब तुम चिंता मत करो।
अभी भी चिंता है बाबा बोलने के बाद? माताजी अभी भी चिंता है? चिंता मत करो बाबा ने बोला है ना, तो सब चिंताएं बाबा को दे देना। बाबा है ना आपके साथ? हाँ बाबा, इसलिए बोला है चिंता मत करो, बाबा बैठा है ना, हमेशा मुस्कुराते रहना, वो ऐसे अच्छे लगते हो।
ओम शांति बाबा। मैं गोविंद बाबा का ब्राह्मण बच्चा, मेरे मन में ऐसा एहसास आया कि अभी तो मोबाइल का युग है, परिवार के साथ भी चिट्ठी पत्री के जगह में डायरेक्ट आदमी मोबाइल से बात कर लेता है। तो तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हारे हर समय तुम्हारे साथ में रहता हूँ, हमेशा तुमको देखता हूँ, तेरी सारी समस्याएं मुझे मालूम है। तुम जब टचिंग रखते हो तो डायरेक्ट टचिंग रखो, तुम्हारी सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। नमस्ते बाबा, ओम शांति।
अच्छा, दो तीन लोगों का सुनते हैं फिर उसके बाद।
ओम शांति। मैंने बाबा से कुछ धारणाओं के लिए कहा था और बाबा ने मेरे और मेरे युगल पर अपना हाथ रख के बाबा ने वो धारणाओं के लिए मुझे प्रॉमिस किया। मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं अपने मायके आई हूँ, मैं अपने घर आई हूँ, मेरे को आपकी टचिंग कैसे महसूस नहीं हुई, आपने मेरा वेलकम नहीं किया। बाबा कहते, बच्ची जब तुम मधुबन के गेट में घुसी ना तो मैं तेरे गेट पर ही खड़ा था, मैंने तेरा मधुबन के गेट पर ही वेलकम कर दिया था। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने बोला, अंतर्मुखी बनो, अपना दिनचर्या बाप समान ठीक करो, अमृत बेला सही करो। जैसे बाप अमृत बेला से दिनचर्या से लेकर टोटल सही काम करते थे कार्य, वैसा तू भी करो, फिर तुम्हारा सब सही हो जाएगा। सबसे दूरी बनाकर रखो, ज्यादा लगाव में रहते हो इसलिए तुमको दिक्कत होता है, लगाव से दूर रखो। और व्यवसाय में व्यवसाय करते हुए सबके साथ रहते हुए सहन करो और सबके साथ ढलने की कोशिश करो। और फिर बाबा ने बोला कि दिक्कत तो आपको बहुत ज्यादा है, इसलिए समय निकाल करके यहाँ मधुबन में आकर के कुछ सेवा भी करो। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सफलता तो आपके जीवन का आधार है, आप स्वराज अधिकारी आत्मा हो, आपने कल्प कल्प बाप समान संपन्न बने हो, इस बार भी बनना ही है। बाबा आपको अमृत बेले से लेकर रात तक आपका श्रृंगार कर रहा है, इसलिए आप बाप समान हो ही, इसे कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू बाबा।
ओम शांति। कभी कभी व्यर्थ हमको बहुत परेशान करता है, तो व्यर्थ की बातों के बारे में बाबा को कहा था कि इसका इलाज क्या है बाबा, तो बाबा ने कहा, मीठे लाडले बच्चे ओम शांति, तुम बहादुर बच्चे हो, यह व्यर्थ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम श्रीमद प्रमाण अनुसार चलते रहो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो, तुम विजयी अवश्य होगे। ओम शांति।
ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा कहे मीठे बच्चे तुम भी मेरा बच्चा हो, तुम्हारे युगल भी मेरी बच्ची है, तुम्हारे दोनों बच्चे भी मेरा बच्चा है, तुम चारों रूहानी दृष्टि से भाई भाई हो, तुम चारों इसी सतयुग में आओगे, इससे तुम घबराना नहीं, तुम्हारे सामने माया घेरेगी, बहुत उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन तुम घबराना नहीं, बाबा को याद करना, तुम माया जीत प्रकृति जीत विक्रमा जीत बनोगे, तुम्हारी हर समस्या दूर होगी, केवल बाबा को याद करते चलो, तुम्हारे चारों मेरे युगल और दोनों बच्चे तुम्हारे सारे समस्या दूर होगी। ओम शांति।
तो अभी पता चला ना कैसे बाबा जवाब देते हैं, बहुत लोगों को उमंग है सुनाने का, बाबा को सुना दीजिए। तो ये अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में सेंटर तो आजकल तो बहुत ही मुश्किल है, सेंटर जाना सब ऑनलाइन चल रहा है, आने वाले समय में और भी क्या आने वाला है पता नहीं है। अभी एटलीस्ट ऑनलाइन से संगठन तो मिल रहा है, क्लासेस मिल रहा है, यूट्यूब से हम क्लासेस सुनते हैं, बहुत सारे कनेक्शन तो है ही है, लेकिन ऐसा भी समय आएगा जब इंटरनेट भी नहीं चलेगा, है ना। तो क्या मेरा संबंध बाबा के साथ निराधार है? ब्राह्मणों का संगठन भी अगर नहीं मिलता है तो भी क्या मैं अपने आप को बाबा के साथ ठीक रख सकती हूँ, रख सकता हूँ? तो इसलिए अभी से उसका अभ्यास करने की जरूरत है। इसलिए उसके लिए बाबा के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बाबा क्या कह रहे हैं मुझे तुरंत महसूस हो जाना चाहिए, तुरंत पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ये समस्या है, ये बात है, इसमें क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं, वो बात चली गई, वो दिन चले गए, बस तुरंत सॉल्यूशन, तुरंत समाधान। बाबा हमें समाधान दे रहे होते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता क्योंकि बुद्धि ब्लॉक है। इसीलिए उसका अभ्यास, वो महसूस करने की शक्ति, बाबा क्या कह रहे हैं। और बाबा जो कह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि बाबा कुछ कह रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, समस्या है, बाबा समाधान भी दे रहे हैं, लेकिन उसके अनुसार करने के लिए हिम्मत नहीं रहता कई बार, है ना। जब हिम्मत नहीं रहता, बाबा कह रहे लेकिन उसके अनुसार ना करके, जब एग्जाम्पल जब हो रहा है तो बाबा कहते कुछ मैसेज आता है कि सच बोलो, सच बोलो, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो झूठ बोल रहे हैं। तो हिम्मत भी रखना पड़ेगा, जो बाबा चाह रहे हैं, बाबा का जो डायरेक्शन है उसके अनुसार करने के लिए भी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत जब रख करके करेंगे तो वो समस्या वहां ही खत्म हो जाएगा। तो फिर जब उस अनुसार हम कदम उठाएंगे, करेंगे, तो बाबा फिर और डायरेक्शंस देंगे और ही हमारा जो कनेक्शन है बाबा के साथ और क्लियर होगा, तो फिर वो और आगे बढ़ सकता है। इसलिए ये जो है टचिंग पावर और कैचिंग पावर, इसको और शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। हाँ जी भाई जी, आप हाथ उठाए थे। जितना आप योग करेंगे, योग बुद्धि को क्लियर रखने की विधि, भाई जी पूछ रहे हैं विधि क्या है, बुद्धि है क्या। हमारा मन, बुद्धि, संस्कार, सभी को पता है ये तीन चीज है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन से हम सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय करते हैं, निर्णय के आधार से कर्म करते हैं, कर्म संस्कार बन जाता है। यह पहले लेसन में हम सभी को ये समझ आ गया था, है ना। बुद्धि हमारी आंख है, तीसरी आंख है जिससे हम देखते हैं। मन से विचार करते हैं, थॉट्स क्रिएट करते हैं, बुद्धि से विजुलाइज करते हैं। जब भी हम सोचते हैं चित्रों में सोचते हैं, चित्रों में सोचते हैं, आप सभी कुछ भी सोचते, सीन्स आते हैं सामने, है ना, कलरफुल सीन्स आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट आते हैं, कभी ग्रे आता है, तो ऐसे चित्र आते हैं बुद्धि में। बुद्धि आत्मा की आंख है। बुद्धि की आंख जब हमारा क्लियर होता है तो हमारा निर्णय एक्यूरेट होता है। तो बुद्धि को क्लियर करने की विधि है विजुअलाइजेशन। हमारा विजुअलाइजेशन जितना क्लियर है, जैसे हम कहते हैं, कमेंट्री में बताते हैं ना कि सूक्ष्म वतन पहुंच गए, परम धाम पहुंच गए, वहां बाबा को देख रहे हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं या केवल देख भी रहे हैं? इन आंखों से नहीं देखते हैं, बुद्धि के आंख से देखते हैं। जैसे मूवी देखते हैं, मूवी इतना क्लियर होता है, फिल्म कितना क्लियर होते है, लाल पीला का सब कुछ क्लियर होता है। ऐसे ही जब हम विजुलाइज करते हैं, क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। जितना बुद्धि में क्लैरिटी है, विजुलाइजेशन में क्लैरिटी है, बुद्धि में बुद्धि क्लियर होता जाएगा। बुद्धि जितना जितना क्लियर, हमारे डिसीशंस एक्यूरेट डिसीशन है ना। तो इसलिए बुद्धि को क्लियर करने की विधि है योग। योग में विजुलाइजेशन और क्लियर होना चाहिए। विजुलाइजेशन क्लियर हुआ वो फिर फीलिंग भी बहुत ही गहरा होगा। फीलिंग गहरा हुआ फिर योग, बहुत मजा आ जाता है योग में। फिर मजबूरी से योग में बैठे नहीं है, आनंद, योग में आनंद हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। ओम शांति।